स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा का एक उद्बोधन है, नारी का सम्मान जहां है।
नमस्कार।
हाँ, ये उद्बोधन वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है।
बिल्कुल, यह हमें भारतीय चिंतन में नारी के स्थान, उसके सम्मान के महत्व पर एक तरह से गहराई से देखने का मौका देता है।
और ये समझने का भी कि जो प्राचीन गौरव है उसे वापस स्थापित करना आज क्यों जरूरी है।
हाँ, वंदनीय माता जी का तो पूरा जीवन ही नारी उत्थान के लिए समर्पित रहा।
सही कहा।
और इस उद्बोधन में ये बात साफ उभर कर आती है।
तो चलिए इस पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं।
जरूर। ये कोई सिर्फ इतिहास का पाठ नहीं है, ये उद्बोधन तो परिवार और समाज की जो नींव है उसमें नारी की क्या भूमिका है उसे समझने का एक प्रयास है।
हाँ, और वो जो मध्ययुगीन रूढ़िवादी सोच थी उसको हटाकर नारियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देने की बात भी इसमें है।
बिल्कुल।
तो शुरुआत वहीं से करते हैं, वो प्रसिद्ध आदर्श वाक्य, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
हाँ, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं।
और हम देखते हैं जैसे सीताराम, राधेश्याम, इन नामों में नारी का नाम पहले आता है, क्या ये उसी सम्मान का प्रतीक है?
हाँ, श्रोत तो यही कहता है, ये उसी गहरे सम्मान को दिखाता है। और देखिए ना, इतिहास में कितने उदाहरण हैं।
जैसे कि?
जैसे गार्गी, मैत्रेयी जैसी ब्रह्मवादिनी थी, मतलब वो नारियां जो वेदों पर, दर्शन पर शास्त्रार्थ करती थी।
हाँ हाँ।
या फिर कैकेयी, सुभद्रा जैसी वीरांगनाएं।
हाँ।
और मनु की पुत्री इला का उदाहरण भी है, जिन्होंने पिता नहीं थे तो यज्ञ पूरा करवाया।
अच्छा।
हाँ, तो ये सब क्या दिखाता है कि नारी जीवन के हर क्षेत्र में सक्रिय थी और सम्मानित भी थी।
कई अटके व्याकरण शास्त्र में उनकी पत्नी भामती का योगदान भी कम नहीं था।
और परिवार में नारी की भूमिका, ये तो उद्बोधन का एक मुख्य बिंदु लगता है। बिल्कुल। श्रुत शिवाजी और जीजाबाई का उदाहरण देता है, हम्मीरदेव और उनकी माँ का, शंकराचार्य और उनकी माँ का।
कैसे माँ के संस्कार संतान को महान बनाते हैं ना?
हाँ, ये पीढ़ी निर्माता वाली बात है। और सिर्फ माँ ही क्यों, पत्नी के रूप में भी नारी का गहरा प्रभाव बताया गया है।
जैसे?
जैसे श्रुत बताता है कि कैसे बिगड़े हुए मुंशी राम को आर्य समाज का मनीषी बनाने में उनकी पत्नी का बड़ा हाथ था।
अच्छा।
या हाड़ा रानी, जिन्होंने अपने पति चूड़ावत में राष्ट्र प्रेम जगाया। मतलब नारी की जो संवेदना है, करुणा, ममता, उसे परिवार की सुख शांति का मूल माना गया है। वो परिवार को जोड़े रखती है।
लेकिन फिर वो गिरावट कैसे आई, वो आदर्श स्थिति बदली कैसे, श्रोत इस पर भी बात करता है।
हाँ बिल्कुल, श्रोत साफ तौर पर मध्य युग में जो गिरावट आई उसका जिक्र करता है।
क्या कारण थे?
अशिक्षा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज, ये सब कुरीतियां पनपी और इन्होंने नारी को जकड़ लिया।
और इसका असर तो दुर्भाग्य से आज भी कहीं ना कहीं दिखता है।
सही कहा, यही तो विरोधाभास है। आज देखिए, शिक्षा तो बढ़ी है, लड़कियां पढ़ रही हैं।
हाँ।
पर दहेज जैसी समस्याएं वो भी बढ़ी हैं। यहीं पर वंदनीय माताजी नारी के चतुर्मुखी विकास की बात करती हैं।
चतुर्मुखी विकास मतलब?
मतलब चार पहलुओं वाला विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सुसंस्कारिता, ये चारों जरूरी हैं।
अच्छा, तो सिर्फ पढ़ना लिखना काफी नहीं है?
नहीं, स्वास्थ्य भी जरूरी है, स्वावलंबन यानी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना, और सुसंस्कारिता भी।
और माताजी का मानना था कि बाल विवाह जैसी प्रथाएं वो उस समय की परिस्थितियों की वजह से थी, आज उनका कोई मतलब नहीं।
हाँ, वो अप्रासंगिक हो चुकी हैं, उन्हें छोड़ने की बात वो करती हैं। और स्वावलंबन की जरूरत आज इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पारिवारिक ढांचे में भी थोड़ी स्वार्थपरकता आई है।
मुझे वो लाला लाजपत राय वाला किस्सा याद आ रहा है, वो कहते थे ना कि भारतीय नारी में श्रेष्ठता के संस्कार तो जन्म से हैं।
हाँ।
पर शक पुरुषों के चरित्रवान होने पर रहता है।
हाँ, ये भावना अपनी जगह ठीक है, पर श्रोत इससे आगे की बात करता है। सिर्फ भावना काफी नहीं, वो चतुर्मुखी विकास जरूरी है। स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारी न होना नहीं, बल्कि व्यायाम, सादगी, बनावटी फैशन से दूरी।
और शिक्षा?
शिक्षा भी सिर्फ स्कूली नहीं, बल्कि जीवन निर्माण वाली, जो समझ दे, चरित्र बनाए, और स्वावलंबन तो है ही।
और धार्मिक अधिकारों की भी बात है शायद?
हाँ, श्रोत ये भी साफ करता है कि नारी के धार्मिक अधिकार पुरुषों से कम नहीं है। महामना मालवीय जी ने भी इसे सिद्ध किया था, सीता जी का संध्या वंदन करने का उदाहरण भी दिया जाता है।
तो मतलब बराबरी का दर्जा जरूरी है?
बिल्कुल, उसके बिना देश का, समाज का पूरा विकास हो ही नहीं सकता।
तो इस सारी बातचीत का, इस उद्बोधन का सार क्या निकलता है? मेरे ख्याल से वंदनीय माता जी का संदेश बहुत स्पष्ट है।
हाँ, क्या है वो संदेश?
कि नारी का सम्मान और उसका ये समग्र विकास, यह सिर्फ उसका व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, ये एक मजबूत परिवार, समाज और राष्ट्र बनाने के लिए अनिवार्य शर्त है।
बिल्कुल सही, ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये आज भी उतनी ही जरूरी है, शायद पहले से भी ज्यादा।
हाँ, ये प्राचीन ज्ञान आज भी प्रासंगिक है।
और यहीं पे एक विचार करने वाली बात छोड़ जाते हैं हम सबके लिए।
जरूर।
स्रोत हमें नारी के चतुर्मुखी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सुसंस्कारिता की जरूरत तो बताता है, पर सवाल ये है कि क्या हमारा आज का समाज वाकई इस पूरे विकास के लिए सही माहौल दे पा रहा है?
ये सोचने वाली बात है।
और अगर नहीं दे पा रहा है तो ये जो आदर्श है और जो हकीकत है, इसके बीच की जो खाई है, उसे पाटने के लिए हम अपने अपने स्तर पर और मिलकर क्या कर सकते हैं, क्या कदम उठा सकते हैं?
ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर हम सबको सोचना होगा।
हाँ, ओम शांति ही।